नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम आपको ज्योतिष के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि कोरोना वायरस के साथ संबंधित रखती हैं, कि इसका जो उत्पत्ति हुई वो ज्योतिष के माध्यम से अगर हम कैलकुलेशन करें कि कैसे ये एक महामारी का जन्म इसने लिया और धीरे धीरे ये पूरे संसार में इसकी जो स्पीड थी वो कितनी तेज़ी से फैली, और ज्योतिष के कौन से ऐसे योग बने थे जिसकी वजह से ये संसार को इसने पीड़ित किया। आपको हम दो चीज़ें बताते हैं कि जो अर्थ एलिमेंट साइन होती हैं, जो धरती की साइन मानी जाती हैं, वो एक होती है मकर राशि और होती है दूसरी वृषभ राशि। इन दोनों का अगर आप साइन देखें, एलिमेंट देखें, तत्व देखें, तो भूमि तत्व राशि प्रधान होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम मकर राशि के राशि या लगन से बेस बना के देखें तो धनु राशि में 26/12/2019 को सूर्य ग्रहण लगा था, और ये बहुत बड़ा ग्रहण था। आप सबको मालूम है, आपने लाइव भी देखा होगा और टीवी पर सब चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रहण काफ़ी सालों बाद आया था धरती पर, और इसका संकेत हमें पहले से पता लग गया था कि जो ग्रहों का योग इस टाइम पर बनेगा वो धरती के लिए काफ़ी मेलेफिक सिद्ध होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों से जो वाइब्रेशन आएगी वो धरती के लिए काफ़ी कष्टकारी सिद्ध होगी। और इसकी प्रेडिक्शन 14 तारीख को 2019 को पहले से ही हमने फेसबुक पर डाल दी थी। तो आज हमने दोबारा से ये पीछे की 3-4 महीने का डाटा निकाल कर उसको दोबारा से कैलकुलेट एनालाइज किया, और हमें काफ़ी चीज़ों का फ्रंट पे चीज़ें पता लगी कि 26/12/2019 को अगर आप मकर राशि का बेस बनाते हैं तो राशि इसलिए मकर राशि बनाई गई क्योंकि अर्थ एलिमेंट साइन जो भूमि की अर्थ की राशि होती है वो दो राशियाँ होती हैं, एक मकर राशि और एक वृषभ राशि। हम जो भी चीज़ें निकालते हैं ज्योतिष के माध्यम से वो सारी साइंटिफिक होती हैं, उसका लिंक बिल्कुल आधार होता है चीज़ों के साथ। जो कैलकुलेशन आती है हमारी वो पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत एक्यूरेट चीज़ें मिलती हैं फ्रंट पर। मकर राशि का 26/12/2019 को जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो उस समय क्या क्या ग्रहों की पोजीशन थी। राहु मिथुन राशि में वक्री होकर, वैसे वक्री ही रहता है, 14.23 डिग्री का, ये ध्यान रखना 14 डिग्री का, यानी कि युवावस्था में आद्रा नक्षत्र में बहुत पावरफुल चल रहा था। केतु शुक्र के नक्षत्र में 14 डिग्री का चल रहा था, दोनों ही बड़े पावरफुल थे, हालांकि केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में चल रहा था। अब इन चीज़ों को समझना आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। बुध धनु राशि में 12th हाउस में मेडिकल एक्सपेंस वे आने वाली दुर्घटना, चोट दुर्घटना जो 12th हाउस होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 12th अपने से, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन से लिखता है, अगर अमेरिका की बात करें उसका 12th हाउस इंडिया विदेश से दिखता है, इसी तरह सभी कंट्रियों का 12th हाउस अपने देश से दूसरे देश का, दूसरी कंट्री विदेश आती है, उसमें जो है बुध शुक्र गुरु चंद्र केतु सूर्य, आप समझ सकते हैं कितने ग्रह थे धनु राशि में 12th हाउस में, ये 6 ग्रह थे। और सूर्य ने चंद्रमा को भी अस्त किया था 26 तारीख को, बुध को भी अस्त कर दिया था और गुरु को भी अस्त कर दिया था, शनि अस्त नहीं था 26 तारीख को, ये ध्यान रखना उस समय। और जब ये 26 तारीख को सूर्य ग्रहण लगा और उसके साथ जितने प्लैनेट थे वो सूर्य के दूषित होने के साथ साथ बाकी ग्रह का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति चल रहा है या उसको कोई बीमारी है या ऐसा कोई सिम्टम्स आ गया है वायरस का या दूषित चीज़ आ गई है, तो वो बाकी फैमिली के मेंबर को भी प्रभावित कर देता है। इसी तरह जैसे ही वो सूर्य ग्रहण हुआ, बुध शनि गुरु चंद्र, केतु को छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर, केतु क्योंकि राहु का पार्ट माना जाता है, सूर्य जब ये क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड में बहुत ताकतवर ग्रह माना जाता है और सूर्य के द्वारा ही सभी ग्रहों को प्रकाश भी मिलता है। इन सभी ग्रहों को उसने दूषित कर दिया क्योंकि सूर्य यहाँ पर दूषित हो चुका था ग्रहण की वजह से, और इस ग्रहण की वजह से ही शनि, गुरु, चंद्र और बुध भी दूषित हो चुके थे, और शनि को छोड़कर बुध, गुरु, चंद्र अस्त भी थे। अब ये खेल यहाँ से ही शुरू होता है ग्रहण के टाइम से, क्योंकि कभी भी जब ग्रहण आता है उसका इम्पैक्ट 40 डेज के बाद धरती पर आता है, खासकर सूर्य का, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जब ऊपर से आती हैं तो धरती पर जो उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो मेलेफिक इफेक्ट होता है वो 40 डेज ले लेता है, और इसका जो इम्पैक्ट है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था वो, जो बड़ा पूरे वर्ल्ड में, वो आप समझ सकते हैं कि 40 डेज आप देख सकते हैं गणना करके, तो 40 डेज आपको लग गए थे। और एक सेंटर पॉइंट उसने जो बनाया चाइना का, क्योंकि धनु राशि जो होती है वो नॉर्थ की राशि मानी जाती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये नॉर्थ की राशि मानी जाती है, बृहस्पति देव की राशि मानी जाती है। बृहस्पति यहाँ पर दूषित हो चुका था और केतु के साथ ये अभी भी चल रहा है, और केतु के साथ गुरु होने से गुरु जो था वो दूषित अवस्था में चल रहा था। ऊपर से शनि का जो मूवमेंट हुआ 24 जनवरी 2020 को, वो भी दूषित अवस्था में मकर राशि में इसका प्रवेश हुआ, और बुध भी जो गोचर में चल रहा है वो भी एक तरह से दूषित चल रहा है, और चंद्रमा जो है वो भी इसके प्रकाश से दूषित रहा, क्योंकि जब तक सूर्य में पावर नहीं आएगी तो सभी ग्रहों के अंदर पावर नहीं मिलती, उसकी ताकत नहीं मिलती। सूर्य जो है ऑलरेडी अभी इतने पावरफुल अवस्था में नहीं है, क्योंकि सूर्य का धनु के बाद मकर, मकर के बाद आप देख सकते हैं कुंभ, कुंभ के बाद मीन, और मीन के बाद जो मेष राशि आएगी वहां से सूर्य की संक्रांति होगी और सूर्य अपनी ताकत में आ जाएगा। तो कुल मिला के जो बड़े ग्रह हैं शनि, गुरु, ये दूषित हो चुके थे। अब शनि जब मकर राशि में आया तो मकर राशि में आते ही उसने नक्षत्र अपना बदला, और वो था उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र। अब देखिए यहां पर सूर्य और शनि की कनेक्टिविटी देखिए। शनि जो है अवाम का स्वामी होता है, जनता का स्वामी होता है, जो जनता को पूरी कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यायाधीश है ये, जनता के साथ गॉड की जो बनाई हुई चीजों का उसको भी कंट्रोल करता है। अब एक ग्रह ऑलरेडी दूषित अवस्था में दूसरे भाव में जब चला जाता है, और जैसे ही उसका नक्षत्र बदला, सूर्य की क्योंकि पावर इस समय कम थी और उसने सूर्य की चीजों को प्रभावित करना शुरू किया। और अगर मकर राशि से देखें तो सूर्य की राशि 8वें भाव की मृत्यु की राशि आती है, और उसने 8वें भाव को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलता चला गया, यानी कि अर्थ पे फैलता चला गया। ये जो वातावरण था वो दूषित होता चला गया, क्योंकि मैंने पहले बता दिया मकर राशि जो है वो अर्थ एलिमेंट राशि मानी जाती है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें, तो वृषभ राशि को अगर हम देखते हैं तो वो भी अर्थ एलिमेंट की राशि मानी जाती है। तो वृषभ राशि, और अगर हम देखें वृषभ राशि को, अगर हम राशि को मान के देखें, क्योंकि ये भी अर्थ एलिमेंट की राशि मानी जाती है वृषभ राशि भी, तो वृषभ राशि का जो अगर आप यही 26 तारीख को ग्रह देखें तो उसके 8वें भाव में थे, जो 6 ग्रह थे उसके 8वें भाव में थे, बुध, शनि, गुरु, चंद्र, केतु, सूर्य, ये 8वें भाव में थे। राहु उसको एस्पेक्ट कर रहा था आद्रा नक्षत्र में, मैंने पहले बोल दिया आद्रा नक्षत्र में राहु का प्रभाव बहुत मेलेफिक पड़ता है, पूरी मतलब कि जो भी चीज़ें डिस्टर्ब करता है वो राहु करता है। और ग्रहण के टाइम पे भी अगर आपको पता हो, अगर आपने ग्रंथ पढ़े हैं या आपने साइंस पढ़ी है, हमारे ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है, तो राहु जो है वो ग्रहण को लगाता है, तो राहु ने इन चीजों को डिस्टर्ब किया 8वें भाव में वृषभ राशि की। 8वें भाव की जो राशि होती है आयु मृत्यु की राशि होती है, और अगर आप बात करें तो यहाँ पर शनि, बुध, गुरु, केतु, सूर्य, चंद्र, ये 8वें भाव में इनके संचार कर रहे थे। तो 8वां भाव जो होता है वो हमारा आयु मृत्यु का, मैंने ऑलरेडी बता दिया आयु मृत्यु का होता है। अब यहां पर भी जो ग्रहों का ये 8वें भाव में अस्त, और ये जो जमावड़ा था ये धरती के ऊपर एक अशुभ साइन दे रहा था, लेकिन अब देखो कुदरत है, कुदरत को तो कोई भी जीत नहीं सकता। ये नहीं पता लग सकता किसी को भी कि ये किस रूप में कोई भी चीज़ घटना होने वाली होती है यूनिवर्स में। ये लेकिन ये संकेत मिल जाते हैं हमें ज्योतिष के माध्यम से कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राहु के संपर्क में जो 6 ग्रह थे उसमें से मंगल और शुक्र ही सिर्फ आउट था, बाकी 6 ग्रह उस समय सूर्य के साथ सारे ही इफेक्टेड हो चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ से इस वायरस का जन्म होता है और इस वायरस को प्रमोट करने में बाकी ग्रहों का भी योगदान था, जो कि पूरे अर्थ एलिमेंट पे इसका प्रभाव आया। और अगर आप वृषभ राशि का चौथे भाव का लॉर्ड देखें तो वो सूर्य होता है। चौथा भाव हमारा मकान का, भूमि का होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है, और वहाँ पर सिंह राशि है। तो शनि जैसे मकर राशि में आया उत्तराषाढ़ा में, और क्योंकि शनि इस समय दूषित चल रहा था सूर्य के द्वारा, और उसने चौथे भाव को भी डिस्टर्ब किया। चौथा भाव हमारा जो घर का होता है, यानी कि जो हम घर से बाहर थे और जो लोग बाहर गए हुए थे उनको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी, और वो लोग धीरे धीरे इधर उधर अपने देश में आने को तरस रहे थे या आने को बिल्कुल कर रहे थे, जिसकी वजह से अगर आप ज्योतिष के माध्यम से देखें तो ये जो एक कोरोना वायरस का जन्म हुआ है ये 26/12/2019 को समझ लीजिए कि इन ग्रहों के माध्यम से हुआ है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि सूर्य का जैसे संक्रांति होगी, सूर्य अपना उच्च राशि में प्रवेश करेगा, तो वहाँ से एक मेडिकल साइंस को एक बहुत अच्छा साइन मिलता है कि यहाँ से जो मेडिसिन है, जो इन्वेंशन है, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मेडिकल साइंस को, लेबोरेटरीज को, उनकी जो रिसर्च है, यहाँ से इनको ग्राफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से कोरोना वायरस शांत नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस शांत तब होगा जब राहु केतु अपने नक्षत्र और राशियां परिवर्तन करेंगे। राहु अपना नक्षत्र आद्रा छोड़ेगा जो 23 मई को, जो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। केतु जो है 23 सितंबर के बाद अपनी नक्षत्र बदलेगा। तो ये ज्योतिष के माध्यम से हमने एक कैलकुलेशन निकाली ताकि हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बता सकें। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे। नमस्कार।